नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद दसवा अध्याय 23 श्लोक क्रमांक 9। इति ते भगवत यात्नाम् श्रृण्वन्तोऽपि न शुश्रुवो क्षुद्राशा भूरि कर्माणो बालिशा वृद्धमानिनः। इति ते भगवत याचना शृण्वन्तोऽपि न शुश्रुवो क्षुद्राशा भूरि कर्माणो बालिशा वृद्धमानिनः। इति ते भगवत याचना शृण्वन्तोऽपि न शुश्रुवुः क्षुद्राशा भूरि कर्माणो बालिशा वृद्धमानिनः। इस प्रकार ते वे ब्राह्मण भगवत भगवान का याचनाम निवेदन श्रृण्वन्तः सुनते हुए अपि यद्यपि न शुश्रुवो नहीं सुना क्षुद्र आशा से पूरित भूरी कर्मणा विस्तृत कर्मकांड में फंसे बालिशा बच्चों जैसे मूर्ख बचकाना वृद्ध मानिना अपने को चतुर व्यक्ति मानते हुए। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। ब्राह्मणों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से किए गए इस निवेदन को सुना, फिर भी उन्होंने इसको अनसुना कर दिया। दरअसल वे तुच्छ या क्षुद्र भावनाओं से पूरित थे और विस्तृत कर्मकांड में लगे थे। यद्यपि वे वैदिक ज्ञान में अपने को बढ़ा चढ़ा मान रहे थे, किंतु वास्तव में वे अनुभवहीन मूर्ख थे। तात्पर्य, ये बचकाने ब्राह्मण तुच्छ आशाओं से यथा भौतिक स्वर्ग प्राप्त करने की आशा से पूर्ण थे, अतः वे कृष्ण के निजी मित्रों के आगमन से प्राप्त होने वाले आध्यात्मिक सुअवसर को नहीं पहचान पाए। आजकल विश्व भर में लोग भौतिक प्रगति के पीछे दीवाने हैं, अतएव वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार कार्यों द्वारा प्रसारित किए जा रहे भगवान कृष्ण के संदेश को नहीं सुन सकते। जमाना बदला नहीं और आज भी पृथ्वी पर दंभी भौतिकतावादी पुरोहित हैं। ब्राह्मणों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से किए गए इस निवेदन को सुना, फिर भी उन्होंने इसको अनसुना कर दिया। दरअसल वे क्षुद्र या तुच्छ भावनाओं से पूरित थे और विस्तृत कर्मकांड में लगे थे। यद्यपि वे वैदिक ज्ञान में अपने को बढ़ा चढ़ा मान रहे थे, किंतु वास्तव में वे अनुभव विहीन मूर्ख थे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के रविवार के श्रीमद् भागवत की कक्षा में। प्रसंग हमने आरंभ किया था ब्राह्मण एवं उनकी पत्नियों का उद्धार, और आठ शिक्षाएं जो भगवान श्री कृष्ण इस लीला के द्वारा हमें सिखा रहे हैं। पहली दो शिक्षाओं की चर्चा हम कर चुके हैं। पहली शिक्षा थी भगवान जब ग्वाल सखाओं को भेजे इन ब्राह्मणों से भिक्षा मांगने के लिए, तो भगवान ये बता रहे थे कि जब भी भगवान कुछ मांगते हैं अपने भक्तों से तो स्वयं के लिए नहीं अपितु उन भक्तों के लिए ही मांगा जाता है। और दूसरी शिक्षा कि जब ये ग्वाल सखा इन ब्राह्मणों के समक्ष पहुंचे और भिक्षा मांगी इन्होंने, जैसे कि आज के श्लोक में हमने पढ़ा कि इनके निवेदन को अनसुना कर दिया इन ब्राह्मणों ने। सुने को अनसुना कर देना, और न केवल अनसुना किया बल्कि इन ब्राह्मणों ने इन ग्वाल सखाओं को तिरस्कृत कर भगा दिया, अपमानित कर भगा दिया। तो दूसरी शिक्षा जिसकी हमने चर्चा की थी पिछले सिटिंग में कि भगवान हमारी गलतियों को सुधारने के लिए चेतावनी भेजते रहते हैं। कृष्णा कीप्स सेंडिंग रिमाइंडर्स टू करेक्ट अस। जैसे यहां पर भगवान चेतावनी भेज रहे थे कि भाई तुम जिस दिशा में इस यज्ञ को ले जा रहे हो वो तुम्हारा परम उद्देश्य नहीं है, इसलिए इन ग्वाल सखाओं को एक चेतावनी के रूप में भेजा, परंतु नहीं समझे ये। तो हमने ये सीखा कि हमारे जीवन में हमें कितना सचेत रहना चाहिए आध्यात्मिक हमारी साधना में, कि भगवान द्वारा भेजी गई ये चेतावनी को हम सबसे पहले समझ सकें और फिर समझने के पश्चात हम अपने आप को सुधारें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहां इन ब्राह्मणों ने न तो भगवान द्वारा भेजी गई चेतावनी को समझा, सुधारना तो दूर की बात थी। तो अब तीसरी शिक्षा भगवान यहां पर हमें सिखा रहे हैं। ग्वाल सखाओं को जब भगवान ने देखा मायूस होकर वो लौट गए और भगवान के सामने आकर कहते हैं कि आप जिस आशा से हमें भेजे थे फेल हो गया, कुछ नहीं मिला। तो अब जब ये सारे ग्वाल सखा मायूस होकर भगवान के सामने खड़े हैं, भगवान मुस्कुराने लगे, तो ये मायूस हैं और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। जैसे कि हम भी कितनी बार राधा मदन गोपाल जी के सामने अपना मायूस चेहरा लेकर खड़े हो जाते हैं और उनकी ओर देखते हैं वो मुस्कुराते रहते हैं, हम मायूस खड़े हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। न केवल मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते हुए बांसुरी भी बजा रहे। अब मान लीजिए आप आपके काउंसलर के पास जाओ मायूस चेहरा लेकर, और वो काउंसलर मुस्कुराते हुए करताल मृदंग बजाए। यदि बांसुरी बजानी आती हो तो बांसुरी बजाए, या कोई वाद्य बजाने लग जाए आपके मायूस चेहरे को देखकर, तो आपको कैसा लगेगा? तो भगवान ग्वाल सखाओं को जब देखे तो भगवान मुस्कुराने लगे। जैसे तमाल कृष्ण महाराज एक बार श्रील प्रभुपाद के पास आए, पूर्ण प्रकार से त्रस्त मैनेजमेंट को लेकर कि ये मेरी बात नहीं मानता, वो मेरी बात नहीं मानता, ये ठीक से नहीं हो रहा है। और इंडिया में सोचो, ये अमेरिकन, इंडिया में प्रभुपाद ने इनको जीबीसी बना दिया मैनेजमेंट करने के लिए। तो बाहर के कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह सब चीटिंग कर रहे हैं, बाहर से चीटिंग हो रही है, अंदर से कोई सुन नहीं रहा। और उस समय तमाल कृष्ण महाराज एक गृहस्थ थे, तो सन्यासी आते और सन्यासी अपना लेक्चर देखकर चले जाते, और फिर पूरा मैनेजमेंट सब इनको करना। तो एकदम परेशान प्रभुपाद के पास गए। तो जब ऐसी अवस्था में प्रभुपाद ने इनको देखा तो प्रभुपाद हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, और ये ज्यादा रोने लगे। फिर जब प्रभुपाद को देखा कि प्रभुपाद हंस रहे हैं मेरे ऊपर, मुस्कुरा रहे हैं, तो ये रोने लगे, प्रभुपाद और हंसने लगे। और प्रभुपाद ने कहा, यू आर द मोस्ट फॉर्चुनेट डिसाइपल बिकॉज कृष्णा हैज एंगेज्ड यू फ्रॉम ऑल साइड्स, देयर इज नो रूम फॉर माया। तो ये है एक शुद्ध भक्त का दृष्टिकोण। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा, और भगवान श्री कृष्ण जानते थे, हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उनके आने से पहले जानते थे कि वो लोग फेल होकर आ रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड में फेल लिखवा कर आ रहे हैं, जानते थे भगवान। तो भगवान क्यों मुस्कुरा रहे हैं और भगवान क्या शिक्षा हमें दे रहे हैं कि जब हम भगवान के प्रतिनिधि बनकर जाएंगे इस संसार में भिक्षा मांगने के लिए, कौन सी भिक्षा मांगने के लिए? कि कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण की सेवा कीजिए, कृष्ण को शरणागत होइए। जब हम ये भिक्षा उनसे मांगेंगे तो भगवान श्री कृष्ण अपने इन ग्वाल सखा प्रतिनिधियों से हमें बता रहे हैं कि हमें रिजेक्शन मिलने वाला है। हर समय कोई फूलों की माला लेकर नहीं खड़े होने वाला कि आइए, आपकी प्रतीक्षा में थे, इतने जन्म जन्मांतर से हम आपकी प्रतीक्षा में थे, कब आप हमें कृष्ण प्रेम का ये संदेश दोगे? सो इन प्रीचिंग, जस्ट लाइक दिस कवर्ड बॉयज वर सेंट एज प्रीचर्स एंड दे वर टोटली रिजेक्टेड। सो द थर्ड लेसन इज, इन प्रीचिंग मेनी टाइम्स वी शैल बी एब्सोल्यूटली रिजेक्टेड। हालांकि जो तत्व ज्ञान है, जो हरिनाम है, जो वैष्णवों का संग है, ये सब कुछ इतना उत्कृष्ट दर्जे का है, इसको हम कहेंगे हाई क्वालिटी, लेकिन फिर भी इस संसार के लोग होंगे जो इसे पसंद नहीं करेंगे। जैसे श्रीमद् भागवत में कहा है कि जो हंस होते हैं, हंस वो केवल अमृत के पीछे चेष्टाएं करते हैं, और जो कौवे होते हैं, जहां कूड़ा करकट वहां पर ही उनका कुंभ मेला लगता है। तो अब प्रश्न ये है कि भाई मैं तो कोई प्रचारक हूं नहीं। अब ये शिक्षा तो उनके लिए होगी ना कि जो प्रचार में लगे हुए हैं, मैं तो प्रचारक हूं नहीं। एक क्रिश्चियन धर्म में एक बहुत बड़े संत हुए सेंट फ्रांसिस, उनका एक बहुत अमेजिंग स्टेटमेंट है प्रीचिंग के बारे में, ध्यान से सुनिए, बहुत ही मुझे आज तक इससे ज्यादा पावरफुल स्टेटमेंट प्रीचिंग के ऊपर नहीं सुनाई दिया। तो सेंट फ्रांसिस कहते हैं, वन शुड प्रीच ऑल डे लॉन्ग एंड इफ रिक्वायर्ड वन कैन स्पीक ऑल्सो। शुड आई रिपीट? वन शुड प्रीच ऑल डे लॉन्ग एंड इफ रिक्वायर्ड एंड इफ यू गॉट अ चांस यू कैन स्पीक ऑल्सो। इसका मतलब क्या है कि खाली लेक्चर देना प्रीचिंग नहीं है। वो कहते हैं कि यदि अवसर मिला तो बोल के भी प्रीचिंग करो, परंतु पूरे दिन भर जीवन भर प्रीचिंग कैसे करना है? अपने उदाहरण से। वन शुड प्रीच विथ वंस एग्जाम्पल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हां, अब इस्कॉन में हम देखें कि हम जो प्रचार कार्य में लगे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने ये उत्तरदायित्व हम सबको दिया है, अमार आज्ञा होइया गुरु होइया, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरी आज्ञा से सभी गुरु बनो, अर्थात दूसरों को ये कृष्ण प्रेम का संदेश दो। तो साधारणतः हम लोग एक प्रवचन के द्वारा या लेक्चर के द्वारा या दूसरों को जैसे फॉलो अप जिसको हम कहते हैं, उस प्रकार से हम प्रचार करते हैं, और बहुत समय बाद फिर वो व्यक्ति देखता है कि हाँ ये पालन भी कर रहा है अपने जीवन में। नए नए जब लोग आते हैं तो केवल लेक्चर सुनते हैं मंदिर में। तो पहले अगर हम उसे लें कि अगर प्रवचन को भी लें तो उसके अंदर भी कितना रिजेक्शन मिलता है हमारे प्रचार में। ये नहीं कि आपने पूरा अच्छी से प्रवचन तैयार किया है, जय श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय, कि जितने सबसे पावरफुल एग्जाम्पल और स्टोरीज हैं वो आपने आपके नोट्स में रखे हैं लेक्चर देने के लिए, और आप इस आशा से लेक्चर दे रहे हो कि बस अब ये लेक्चर के पश्चात सभी सरमुंडवा के तिलकधारी बनने वाले हैं। कई बार हमको ऐसी हम कल्पना करते हैं, लेकिन होता क्या है, कई बार जो सरमुंडवाए हुए बैठे हैं ऑलरेडी वो लोग नींद मार रहे हैं, दूसरे सरमुंडवाना तो दूर की बात है। तो ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा टेस्ट। मुझे याद है एक प्रोग्राम के लिए मुझे बुलाया गया था बंबई में, और ये कोई रेगुलर वहां अपने राधा गोपीनाथ मंदिर में आने वाले कोई कांग्रीगेशन मेंबर नहीं थे, नए नए कोई थे, तो और मैं भी नया नया ज्वाइन किया था, तो जो भी प्रीचिंग के लिए प्रोग्राम्स के लिए तो चलो जाओ जाओ लेक्चर के लिए जाओ। तो मुझे एड्रेस दिया गया, उस समय सेलफोन वगैरह कुछ भी नहीं था, तो एड्रेस दे दिया मुझे, तो एड्रेस लेकर मैं गया लालबाग एरिया के, वहां पर था। तो मैंने देखा कि एड्रेस था और तीन चार बिल्डिंगों की सोसाइटी थी उसका ही एड्रेस था, कोई हॉल नहीं, किसी का घर नहीं, बस सोसाइटी का एड्रेस था। तो मैं पहुंचा तो तीन बिल्डिंगों के बीच में होता ना जगह होती ना, तो वहां पर स्टेज वगैरह लगाया हुआ था, मुझे लगा शायद यहां पर प्रोग्राम होगा, तो स्टेज पर देखा मैंने गिटार लेके एक बैठा है, एक वो ड्रम्स लेके, वो फिर एक वो सिंथेसाइजर कीबोर्ड के ऊपर, जैसे ऑर्केस्ट्रा पार्टी, तो पूरी ऑर्केस्ट्रा पार्टी सजी हुई थी और वो लोग अपना प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब ऑर्केस्ट्रा भी शुरू होने वाला है। तो मैं वहां पर खड़ा रहा, फिर एक व्यक्ति भागते हुए आया, प्रभु जी आप जल्दी आ गए। मैं ठीक है रुक जाता हूं, तो प्रोग्राम कहाँ है? बोला यहीं पे। मैंने पूछा ऑडियंस किधर है? बोला ऐसा कीजिए अभी हमारा ऑर्केस्ट्रा शुरू होने वाला है, ये गणेश चतुर्थी के टाइम का था, तो हमारा ऑर्केस्ट्रा शुरू होने वाला है, पहला कार्यक्रम हमारा हो गया, अब नेक्स्ट ऑर्केस्ट्रा शुरू होने वाला है, तो उसके पहले सभी लोग को हमने डिनर के लिए भेजा है। अच्छा, तो डिनर लेके आएंगे वो लोग? नहीं 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 नहीं, वो लोग डिनर खाते रहेंगे, आप यहां बैठ के लेक्चर दो, सुनाई देगा उनको। क्योंकि सभी बिल्डिंग के ही वाले हैं, सब तीन चार बिल्डिंग वाले, सोसाइटी वाले हैं, और हमारा साउंड सिस्टम बहुत पावरफुल है, आप बैठ के दो यहाँ पे लेक्चर और वो खाते खाते सुनेंगे उन। तो अब इतनी बड़ी तपस्या थी, ये एक ऐसा कार्यक्रम मैं आज तक भूला नहीं हूं। मेरे सामने एक ऑडियंस नहीं, वो जो बोल के वो भी चला गया खाने के लिए, एक व्यक्ति मेरे सामने नहीं, और पीछे ये पूरी बैंड पार्टी, इनको कोई लेना देना नहीं है मैं क्या बोल रहा हूं। और अप्रकट रूप से ऑडियंस पता नहीं कहां पर क्या कर रही है। तो ऐसे ऑडियंस को लेक्चर देना, तो कलयुग में ये सब बहुत चैलेंजेस आते हैं। एक हमारे कॉन्ग्रीगेशन डिवोटी, उन्होंने बेलापुर में एक होटल खोला था, अभी भी है, तो उन्होंने मुझे बेलापुर बुलाया। अब ग्रैंड रोड से बेलापुर पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, तो वहां पर उन्होंने एक गणेश पंडाल में लेक्चर मेरा आयोजित किया था। और वो गणेश पंडाल कितना बड़ा था कि जैसे मैं यहां पर बैठा हूं और हमारे विजय गुप्ता प्रभु, बस इतना बड़ा वो पंडाल था। और रोड, बाहर रोड, और इतना बड़ा पंडाल, लेकिन गणेश जी की मूर्ति, वो ये जो ऊपर हाथी है, नीचे से लेके हाथी तक, इतनी बड़ी मूर्ति गणेश जी की। तो सोचे इतने छोटे पंडाल में ऑडियंस कौन बैठेगा, पहले तो गणेश जी की मूर्ति इतनी बड़ी और मैं कहां बैठूं। तो मैंने पूछा कि ये कौन सा प्रोग्राम है भाई, मतलब मुझे क्या गणेश जी की आरती करनी है या मुझे यहाँ लेक्चर देना, क्या करना? बोला नहीं नहीं आप यहाँ पे साइड में बैठो, तो आसन लगाया साइड में, इतने बड़े गणेश जी की मूर्ति उसके साइड में मुझे बिठाया। मैंने कहा अब ऑडियंस? बोला नहीं, ऑडियंस जो चलते हुए आते हैं दर्शन करते हुए। तो मैं बोला अच्छा, तो रनिंग कॉमेंट्री होगी यहाँ पे। क्योंकि ऑडियंस सब रनिंग ऑडियंस रहने वाली, तो ये और भी मुश्किल लेक्चर था। कम से कम वो पहले वाले लेक्चर में तो मुझे पता था कि कोई अपने घरों में एक जगह पर तो बैठा है शायद, सुन रहा होगा। यहां पे मैंने लेक्चर शुरू किया कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य, तो 4 लोग खड़े होके सुन रहे हैं, और जैसे ही वो पॉइंट खत्म, वो चले गए और 3 आ गए, आके देख रहे हैं, पहले गणेश जी को देख रहे हैं, फिर मुझे देख रहे हैं, और कई तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों बैठा है यहां। उनको लगा जैसे वो गणेश पंडाल में झांकियां बनाते हैं ना, तो उनको लगा कि झांकी बनाई हुई है। एक ने तो बोल भी दिया, बग गणपति जा शेजारी चाणक्य बसलाए। तो कई बार प्रचार में ऐसी ऐसी हालत होती है प्रचारकों की कि कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं कैसे, तो क्योंकि वो डिवोटी ने ऑर्गेनाइज किया था तो उनको बुरा ना लगे, इसलिए 45 मिनट एक घंटा जो भी प्रवचन दिया, और हर 2 मिनट में ऑडियंस बदल रहे थे, नव नवायमान प्रचार हो रहा था वो, तो बहुत अलग अलग प्रकार से हम देखें कि इस्कॉन में जब हम प्रचार करने जाते हैं तो चुनौतियां चैलेंजेस सामने आते हैं। जैसे प्रभुपाद, अभी हम लोग इस्कॉन में क्या प्रचार करते हैं, प्रभुपाद जो जिनको भगवान कृष्ण ने आध्यात्मिक संसार से भेजा, तो प्रभुपाद 26 सेकंड एवेन्यू में उन्होंने शुरुआत के दिनों में पब्लिसाइज करके एक लेक्चर खुद का ऑर्गेनाइज किया, और उस दिन इतनी बारिश हुई न्यूयॉर्क में कि कोई नहीं आया, एक ऑडियंस नहीं, एक व्यक्ति नहीं, प्रभुपाद वेट कर रहे हैं। और फिर प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, क्योंकि मेरा ये उत्तरदायित्व है ये प्रचार करना, क्योंकि उनके गुरु महाराज ने कहा था अगर कोई नहीं आए तो 4 दीवारी को प्रचार करो, यहां तक कह दिया था भक्ति सिद्धांत ने। तो उन्होंने टेप रिकॉर्डर सामने रखा और टेप रिकॉर्डर को लेक्चर दिया और उसको रिकॉर्ड किया, और वो आगे चलकर भगवद गीता का इंट्रोडक्शन बना। तो कहने का मतलब ये है कि प्रभुपाद ने उस समय सामने एक भी ऑडियंस शारीरिक रूप से नहीं था, लेकिन क्योंकि प्रभुपाद ने प्रचार किया फिर भी एज इट इज, तो आज तक वो लेक्चर कितने लोग पढ़ रहे हैं भगवद गीता यथारूप के इंट्रोडक्शन के रूप में, आज तक प्रभुपाद प्रचार कर रहे हैं उसका। एक मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, राधानाथ महाराज का एक प्रोग्राम सायन हॉस्पिटल में ऑर्गेनाइज किया था, और सभी जो ऑर्गेनाइजर थे वो भूल गए कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मैच है, तो ऑडिटोरियम का कैपेसिटी कुछ 600 से 700 स्टूडेंट्स का, सो जो राधानाथ महाराज को बुलाया गया एक स्टूडेंट नहीं आया, एक भी स्टूडेंट नहीं। अभी इंडिया पाकिस्तान, वो भी फाइनल इंडिया पाकिस्तान, कौन आएगा लेक्चर सुनने के लिए, ऐसे कोई आता नहीं, इंडिया पाकिस्तान फाइनल चल रहा है कौन आने वाला है। तो राधानाथ महाराज को बिठाया गया वो डीन के ऑफिस में कि कम से कम एक हाथ लोगों को तो पकड़ के लाते हैं किसी को, तो एक गलती से वो टॉयलेट के लिए बाहर आया कमरे से, टीवी रूम से एक स्टूडेंट, तो उसको पकड़ लिया, बोला नहीं मैं मैच देख रहा हूं, मैं मेरे प्रोग्राम में, मेरे को खाली टॉयलेट जाना है, वापस जा रहा हूं। नहीं अरे स्वामी जी अमेरिका से आए, अरे वो तो इधर ही रहने वाले ना, बाद में मिल लेंगे उनसे, इंडिया पाकिस्तान फाइनल चल, तो उनको कैसे तो 3-4 लोग पकड़कर राधानाथ महाराज के सामने बिठा दिया। अब सामने स्वामी जी के सामने बैठ गया तो अभी कुछ बुरा भी नहीं करना चाहता था, कहना चाहता था, तो बैठ के फिर महाराज पूछने लगे, सो हाउ इज द मैच गोइंग ऑन, तो उसको अच्छा लगा ना, मैच के बारे में पूछ रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे कुछ 15-20 मिनट महाराज उनसे बात किए, वो स्टूडेंट, वो क्या प्रोग्राम था महाराज का जो 500-600 के लिए ऑर्गेनाइज किया था कॉलेज प्रोग्राम, केवल एक वो स्टूडेंट जो कि टीवी रूम से टॉयलेट जाने के लिए निकला था, 15 मिनट उसको पकड़कर बिठा दिया महाराज के सामने, आगे चलकर वो महाराज का दीक्षित भक्त बना। तो पॉइंट ये है, नेवर अंडर एस्टिमेट द इफेक्ट ऑफ प्रीचिंग, कि ये नहीं समझना चाहिए कि अरे भर भर के जब लोग आएंगे तब प्रचार बहुत अच्छा होगा। यदि कोई एक व्यक्ति भी, हमने चाहे 10 बार वही चीज बोली हो, और 10 लोगों को बोली हो, 10,000 लोगों को बोली हो, लेकिन अभी जो एक जीव आ रहा है, वो एक जीव ने हो सकता है कि ये भगवत गीता की कोई एक पॉइंट या मुद्दा या संदेश भगवान का पहली दफा अपने जीवन में सुन रहा हो, पहली दफा अपने पूरे नित्य काल में सुन रहा हो। अभी उस दिन एक व्यक्ति, शायद वो इसमें थे, महिंद्रा एंड महिंद्रा में काम करते, रिटायर्ड, हमारे गोपालन प्रभु को जानते थे, तो बता रहे थे कि वो आए और वो ढूंढ रहे थे, वो बैंगलोर के इस्कॉन जाके रहा है और तब से वो नासिक में ढूंढ रहे हैं कि इस्कॉन किधर है, मालूम ही नहीं उनको। और वो बोले कि वो एक बार पेट्रोल भरने के लिए एक पेट्रोल पंप पर खड़े, तो पीछे देखा अपनी बोलेरो, तो भाग कर गए और पूछा कि भाई यहां पर इस्कॉन का मंदिर है, और जो भी वो हमारे बोलेरो के ड्राइवर थे उन्होंने एड्रेस दिया। तो अब कहने का मुद्दा ये है कि हम कितने लोगों को, हाँ, पूर्णिमा बस स्टॉप के पीछे, हाँ, एकदम रात में भी उठा के पूछे तो ये एड्रेस याद रह जाता पूरा, जनरल वैद्य नगर वृंदावन कॉलोनी पूर्णिमा बस स्टॉप के पीछे हरे कृष्णा मंदिर, हम एकदम कैजुअली बोल देते, पता नहीं कि उस व्यक्ति के लिए ये एड्रेस देना भी, ये भी एक प्रचार है। प्रचार का मतलब ये नहीं खाली व्यास आसन पर बैठकर भगवत गीता सामने रखकर लेक्चर देना, उसको एड्रेस भी देना, ये भी एक प्रचार है। और हो सकता है कि वो केवल एक एड्रेस देने के वजह से उसका, उसकी जो आध्यात्मिक क्रियाएं हैं वो चालू हो जाए। तो प्रीचिंग जो है वो, उसको कभी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जैसे यहां पर जब भगवान ने इन ग्वाल सखाओं को भेजा तो ये फेल होकर आ गए, बाहरी रूप से फेल होकर आ गए। तो भगवान क्या देख रहे हैं कि बाहरी रूप से मत देखो, इनका उद्धार होना है, और इन्होंने जो तुमको रिजेक्ट किया है इसके कारण इनकी पत्नियों का उद्धार पहले होगा जो कि इनसे ज्यादा प्रगत भक्त है। तो हम उसकी चर्चा करेंगे कि कैसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था ये रिजेक्शन भी, अपरेंट रिजेक्शन जिसको बोल सकते हैं। तो कई बार हम देखेंगे कि जब हम भगवान के प्रचार कार्य में लगते हैं तो बाहरी रूप से कुछ और दिखता है, परंतु हमें आंतरिक रूप से देखना है कि भगवान की योजना आंतरिक रूप से चलती है, बाहरी रूप से नहीं चलती। जैसे मुझे याद है बंबई में हर 3 महीने हम 6 दिन का गीता कोर्स लिया करते थे। तो एक व्यक्ति वो गीता कोर्स के 3रे दिन में आया और कोई रजिस्टर्ड नहीं था, वो नीचे भक्ति वेदांत हॉल में लेक्चर चल रहा तो आकर बैठ गया, और फिर लेक्चर के बाद वो मुझसे पूछता है कि यहां पर मंदिर कहाँ है। मैंने कहा मंदिर ही है। उसने कहा लेकिन मूर्तियां कहाँ हैं। तो उसे पता ही नहीं था कि मंदिर ऊपर है, तो पहली दफा समझ गया कि पहली दफा आ रहा है। तो मैंने उसे पूछा कि क्या नाम है आपका। तो उन्होंने कहा प्रमोद शेट्टी, वो एकदम मस्कुलर बिल्ट शेट्टीज होते ना वो साउथ इंडियन, वैसे उस टाइप का था। तो फिर मैंने पूछा कि कैसे आपको पता लगा यहाँ के बारे में। तो उसने अपनी स्टोरी शुरू की बताना। उसने कहा कि देखो मेरा यहाँ पर ताड़दे में बियर बार है, परमिट रूम, बियर बार, सब कुछ, नॉनवेज वगैरह वहां पे सब कुछ होता है। लेकिन मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मीरा रोड में रहती है और वो आपके मीरा रोड के इस्कॉन में जाती है, तो उसने मुझसे मिलने के लिए मना कर दिया। उसने बोला जब तक तुम इस्कॉन में जाना शुरू नहीं करोगे। तो इसलिए मैं आया हूं, मेरे को बताओ अभी कि ये इस्कॉन का ही मंदिर है ना, बोनाफाइड इस्कॉन का मंदिर है। मैंने हाँ बोनाफाइड इस्कॉन का मंदिर, अच्छा ठीक है। तो वो उसने वो कैमरा लेके आया था, और उसने एक को दिया कि फोटो खींचो इनके साथ मेरा, तो प्रूफ दिखाना चाहता था कि मैं इसको के मंदिर में जाके आया हूं फोटो के साथ, सब एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ। तो बहुत ही विशेष ये कैरेक्टर था, ये कोई इंटरेस्ट नहीं था इसको भक्ति भक्ति में, इसका इंटरेस्ट और कुछ था। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अभी आप जब आए हैं तो पूरा अच्छी से मंदिर में बताता हूं आपको। तो फिर उसने मंदिर देखा वगैरह, अच्छा लगा उसको। फिर दूसरे दिन वापस आया वो, गीता कोर्स में वापस आके बैठा। मैंने कहा अच्छा आज कैसे, लेकिन उसने कहा है कि खाली विजिट करने से नहीं होगा, उधर जाके सुनो वो लोग क्या बोलते हैं। तो उसने कंडीशन रखा, तो बोला कि अभी मैं बैठ के सुनता हूं, बोलो आप बोलो कुछ बोलो मुझे, ताकि मैं बता सकूं कि ये मैं सुन के आया हूं, आपका कुछ फिलॉसफी वगैरह होगा वो जानूंगा मैं। तो अब सोचिए कि ऐसे व्यक्ति को आप क्या सुनाएंगे, जब उसका कॉन्शियसनेस पहले से बता दिया कि वो क्यों सुनना चाहता है। अब धीरे धीरे उसको वहां से फीडबैक मिलने लगा कि ये तुम करोगे तो मैं खुश होऊंगी। तो वो उसके प्रसन्नता के लिए उसने सब कुछ, उसने माला ली और फिर उसने कहा कि ये तिलक कैसे लगाते मुझे सिखाओ। फिर तिलक लगाया, फिर कंठी माला। तो मैंने पूछा कि आप पालन करते हैं चार नियम का, कांदा लहसुन नहीं खाना ये सब। नहीं नहीं मेरे तो कांदा लहसुन छोड़ो, मेरे तो बियर बार परमिट रूम में बैठता हूं मैं। तो फिर उसने यहां तक ये सब कुछ पालन करना शुरू किया और वो मुझे बोलता था कि रोज आके रिपोर्ट देता था मुझे, मुझे बोलता था कि उधर परमिट रूम में वो खुद का वो ओनर था, वो तो गल्ले पे बैठता था रोज, तो सब शराबी कबाबी आते जाते रहते थे अंदर खाने पीने वाले। और ये घर से टिफिन आता था इसका, कभी जिंदगी में घर से टिफिन नहीं आया था इसका, घर से टिफिन आता था बिना कांदा लहसुन बनवा कर। तो ये बोलता था कि बाकी सब लोग वो मुर्ग मसलम खा रहे हैं और ये खिचड़ी सलाद और ये सब खा रहा है उधर बैठ के। तो मैंने कहा कि शायद बहुत प्रेम होगा उससे, इतना सब कुछ तपस्या कर रहे हो तुम। नहीं नहीं मेरे को खाली उसको खुश करना है और वो बहुत खुश हो रही है, ये सब मैं कुछ कर रहा हूं बहुत खुश हो रही है, तो मेरे को और अच्छा लग रहा है, तो और बताओ और क्या क्या कर सकता हूं मैं। तो उसने 16 माला चालू किया, एकादशी पालन चालू किया, चार नियम चालू किया, कंठी माला तिलक सब कुछ। और फिर फाइनल जो उसने क्वेश्चन पूछा, तो उसके बाद मुझे लगा कि भाई अगर ये तुम जाकर उसे बता दोगे तो पता हो सकता है कि कुछ दूसरी प्रतिक्रिया मिले। तो उसने मुझे पूछा कि क्या मैं तुम्हारे जैसा बन जाऊं तो सबसे खुश करूंगा उसको। मैंने कहा मुझे बहुत बड़ा डाउट है उसके ऊपर कि ये स्टेप लेने से वो बहुत खुश होगी। तो मैं नहीं, मैं पूछ के देखता हूं। मैंने ठीक है पूछ के देखो। तो वो पूछा और वो इतना खुश हो गई कि हाँ ये तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन तुम लेने वाले, और मैं पूर्ण रूप से सहयोग करती हूं कि तुम बन जाओ ब्रह्मचारी। और फिर जब उसने ब्रह्मचारी वर्ड सुना, उसको पता ही नहीं था कि ये ब्रह्मचारी होता है, तब उसने कहा कि नहीं 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 ये तो करे कराए पे पानी फिर जाएगा। तो वो फिर मैं जब तक वहां पर था तो वो रेगुलरली रोज आता था, और फिर धीरे धीरे उसको जब फिलॉसफी इस्कॉन के स्टाइल में समझ में आई और उसको पता लगा कि हाँ भाई यहाँ पे केवल ब्रह्मचारी नहीं गृहस्थ भी हैं जो पालन कर रहे हैं सब कुछ, तो वो फिर बहुत पक्का कॉन्ग्रीगेशन मेंबर बन गया। और मैं इस विजिट में उसको मिला भी, तो मैंने कहा कि क्या समाचार है, तो उसने कहा कि समाचार बहुत अच्छा है, समाचार ये है कि मैंने इतना सोलह माला कर लिया, इतनी एकादशी कर ली और इतना वैष्णव का संग कर लिया, इतने गीता कोर्सेस सुन लिए अभी, कि अभी मेरे को उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं। और फिर उसने मेरे को एक पते की बात बताई, उसने कहा कि एक्चुअली उसको भी मेरे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसका उद्देश्य एक ही था कि ये मंदिर के पास रहता है और वो भी राधा गोपीनाथ मंदिर के पास रहता है, तो उसको ये न के न प्रकारे ना मुझे प्रचार करना था। तो वो कभी मुझसे मिली नहीं, लेकिन फोन पे ही मुझे ऐसा प्रचार करके मुझे ऐसा बना दिया कि अभी मैं इसको छोड़ नहीं सकता। तो देखिए कि कोई किस तरीके से प्रचार कर सकता है। सो पॉइंट क्या है, नेवर अंडर एस्टिमेट द इफेक्ट ऑफ प्रीचिंग। जैसे यदि हम कहें, कई बार लोग आके बोलते हैं कि हम अपने माता पिता को प्रचार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो लोग सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं। तो हम क्लासिक उदाहरण देते हैं कि माता पिता को प्रचार करने का ओरिजिनल प्रयास किया था प्रहलाद महाराज ने। ओरिजिनल अपने पिताजी को प्रचारक बनने का पोजीशन कौन लिए थे, प्रहलाद महाराज। और क्या हुआ था, हिरण्यकशिपु कंठी माला पहन के सोलह माला शुरू किए, नहीं। तो प्रहलाद महाराज जो फेल हुए अपने प्रचार में, तो प्रहलाद महाराज के प्रचार का फेलियर का रिजल्ट क्या था, नरसिंहदेव का अपीयरेंस। अब अगर हम इस स्टोरी को थोड़ा अपने अनुसार टर्न करें कि प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु की गोद में क्या बोला, हिरण्यकशिपु ने पूछा, बोल बोल प्रहलाद की तूने सबसे अच्छी बात क्या सीखी गुरुकुल में। प्रहलाद महाराज अगर जो उन्होंने कहा कि मैंने सबसे अच्छी बात सीखी कि विष्णु की भक्ति ये परम उद्देश्य है सभी मनुष्यों का, और वृंदावन में जाकर विशेष रूप से आपको पिताजी, और वो पिताजी नहीं बोला, असुरवर्य, असुरों में सबसे श्रेष्ठ, आपको वृंदावन में जाकर उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो मान लो कि ये स्टोरी इस प्रकार से होती कि हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज का ये लेक्चर सुनने के बाद वो वृंदावन यात्रा के लिए निकला है, और कार्तिक के महीने में दीप ऑफर कर रहा है दामोदर को हिरण्यकशिपु। तो हमारे लिए एक ये नरसिंह अवतार होते ही नहीं। तो देखो हमारे, हम साधकों के लिए नरसिंह भगवान का अवतार कितना महत्वपूर्ण है, कि प्रभुपाद ने मॉर्निंग प्रोग्राम में और जब भी कहीं पर कोई समस्या हमारी होती है, नरसिंह आरती शुरू हो जाती है हमारी। तो भगवान श्री नरसिंह देव का अवतार क्यों हुआ, एक कारण ये बोल सकते हैं कि प्रहलाद महाराज का प्रीचिंग फेल हुआ, इसलिए उनको आना पड़ा। क्योंकि हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज के इतने सौम्य प्रीचिंग से नहीं सुधरने वाले थे। हिरण्यकशिपु को सुधारने के लिए दूसरा लेक्चर जरूरी था, मुंह से नहीं हाथों से। तो इसलिए नरसिंह भगवान ने दूसरे प्रकार से प्रचार किया। तो यहां पर यह समझ में आ रहा है कि द एफर्ट्स ऑफ प्रहलाद महाराज डिडंट गो इन वेन ऑफ हिज प्रीचिंग, लॉर्ड नरसिंह देव अपीयर्ड। अब यहां पर हम देखें ये लीला जो चल रही है कि इनको रिजेक्शन मिला। तो इनको जब रिजेक्शन मिला तो मैं इसके बारे में सोच रहा था कि मान लो अगर ये स्टोरी इस प्रकार से होती कि भगवान ने इनको भेजा और ये जो याज्ञिक ब्राह्मण थे इनसे इन्होंने भिक्षा मांगी, तो अब यज्ञ उनका प्रारंभ हो चुका था और ऐसी घड़ी में ये लोग पहुंचे थे जब अंतिम भगवान विष्णु को आहुति देना बाकी था। तो सोचो कि ऐसी स्थिति में, कल हमारा यहां पे यज्ञ हुआ, तो सोचो कि यज्ञ बीच में सब चल रहा है, कोई आए बच्चा यहां से घूमते हुए आए, और जो जो यज्ञ में बैठे हैं उनको आकर हमारे अयोध्यापति प्रभु को पूछे कि मुझे वो केला मिलेगा, वो केला वो तो मान लीजिए कि हाँ हम लोग जानते हैं कि भाई ये यज्ञ फल है, ये देना अच्छा है, तो हम कितना देते हैं उसको, ठीक है ये ले ले जा केला ले जा, अच्छा वो अनार मिलेगा, ठीक है वो अनार भी ले जा, कितना मिलता उनको। तो एक प्रकार से जो रिजेक्शन हुआ वो अच्छा था उनके लिए, क्योंकि जब वो उनकी पत्नियों के पास गए तो उन्होंने भर भर के दिया। अगर ये लोग देते तो ये लोग देते तो भी कितना देते, ठीक है भाई ये इतना सा ले जाइए, यहां पे ले जाए, इतना थोड़ा ही देते ना इनको। तो रिजेक्शन के वजह से जब वापस ये उनकी पत्नियों के पास गए तो पत्नियों, क्योंकि एक्चुअल जो वो क्यों क्या भीख मांग रहे थे, वो खाने की भीख मांग रहे थे क्योंकि भूखे थे। तो जो पति होते हैं उनको ज्यादा आइडिया नहीं होता मेन्यू में क्या होता है, मेन वो मेन्यू बनाया किसने था, वो पत्नियों ने, तो उनको मालूम था पूरा, उनके पास था चार्ज। तो रिजेक्शन में उनको मेन्यू में ज्यादा कुछ मिला तो अच्छा हुआ कि नहीं, उनके जिसके लिए जिस प्रयोजन के लिए वो गए थे वो प्रयोजन उनका पत्नियों के द्वारा ज्यादा अच्छे से सिद्ध हुआ। जैसे हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में जब गोविंदा खुला था, मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले, तो ओपनिंग में सब ब्रह्मचारी को बुलाया था, फर्स्ट गोविंदास का ओपनिंग ब्रह्मचारी के लिए फीस्ट, और सब ब्रह्मचारी एकदम सुपर एक्साइटेड थे, सबको सबको मेनू कार्ड पहले से एक दिन पहले ही दे दिया था, सब एकदम डिसाइड करके रखे थे क्योंकि अभी अपना गोविंदास है और कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब पहले घरों में जाते थे तो जो ऑलरेडी बना हुआ है वही आएगा प्लेट में, ऑर्डर नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर अभी मेनू कार्ड है और सब ब्रह्मचारी को टेबल पे बिठा कर मेनू कार्ड दे रखा था। तो हुआ क्या है कि हम लोग कुछ 4-5 ब्रह्मचारी एक टेबल पर बैठे और हमने देखा कि मेनू कार्ड सबको दिया था लेकिन सर्विंग चालू हो गया ऑर्डर करने से पहले, और उस टाइम जब गोविंदा शुरू हुआ था तो वहां पर सबसे जो उनके हिट आइटम्स कुछ साउथ इंडियन और इटालियन ये सब थे। तो फिर हमारी टेबल पर कुछ एक बहुत एक्सपीरियंस्ड ब्रह्मचारी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो सर्विंग कर रहे हैं कुछ भी मत लेना। क्यों? क्योंकि वो लोग जो साउथ इंडियन मेनू शुरू किए उसके अंदर इतने मोटा मोटा वो उत्तप्पा देना शुरू किया सबको, क्योंकि पहले ये खा लेंगे तो फिर ज्यादा खा नहीं पाएंगे आगे। तो हम में से एक ब्रह्मचारी को ये स्ट्रैटेजी मालूम था कि होटल में सर्विंग की स्ट्रैटेजी होती है कि पहले ऐसे आइटम से पेट सबका भर दो कि जो एक्सोटिक आइटम्स है उसके लिए फिर जगह कम रहे। तो देखा कि ये टेबल पे सब रिजेक्ट कर रहे हैं, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो बाकी लोग देखे बड़े वैरागी लग रहे हैं, लोग तो कुछ खा नहीं रहे, और बाकी लोग जैसे एक के बाद एक मोटा मोटा उत्तप्पा आ रहा है, खाए जा रहे खाए जा रहे। और फिर जब वो लोग का आधा पेट भर गया फिर यहाँ पे इन्होंने ऑर्डर किया अब हमको मसाला डोसा लेके आओ, सादा डोसा लेके आओ। तो वो जब थर्ड राउंड में आना शुरू किया तब इनको समझ में आया कि अरे ये भी है मेनू में, तब तक इनका पेट इतना भर चुका था। और फिर ये जो टेबल के ऊपर कार्यक्रम चालू हुआ। तो मुझे ये किस्सा याद आया कि यहां पर शुरुआत में जो रिजेक्शन हुआ, इसलिए कई बार आप देखो कि ब्रह्मचारी बहुत एक्सपर्ट होते हैं, पहले रिजेक्ट करते हैं, तो ये नहीं समझना चाहिए कि बहुत बड़े वैरागी हैं। तो वैसे ही यहां पर जब इनको रिजेक्ट किया गया तो भगवान श्री कृष्ण जानते थे, और भगवान श्री कृष्ण हो सकता है कि एक तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज इस प्रकार से किया कि पहले उनके पास जाओ और वो लोग रिजेक्ट करेंगे और वो लोग जब रिजेक्ट करेंगे तो असली मेन्यू उनकी पत्नियां देंगी। तो यही हुआ। तो इसमें एक सूक्ष्म मुद्दा यही है कि हम कौन से पॉइंट पर हैं, प्रीचिंग में रिजेक्शन। तो प्रीचिंग में जो रिजेक्शन, वो भी हम अगर बाहरी रूप से देखें तो कुछ और कहानी होती है, और आंतरिक रूप से उसकी और कुछ कहानी होती है। श्रुत कीर्ति प्रभु, श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल, वो एक प्रभुपाद का पास टाइम बता रहे थे कि मेक्सिको से वो अमेरिका के एक फ्लाइट में बैठे प्रभुपाद के साथ। तो अब उस समय ऐसा था कि प्रभुपाद के साथ प्रभुपाद के सर्वेंट और उनके सेक्रेटरी साथ में ट्रेवल करते थे। तो श्रुत कीर्ति प्रभु वो प्रभुपाद के सर्वेंट थे और सेक्रेटरी कई बार चेंज होते रहते थे, हरिशौरी प्रभु इत्यादि, या फिर रविंद्र स्वरूप प्रभु, ये लोग ऐसे। तो तीन लोग थे फ्लाइट में। तो प्रभुपाद विंडो सीट पे बैठे, उनके बगल में श्रुत कीर्ति प्रभु और उनके बगल में उनके सेक्रेटरी प्रभुपाद के। तो जैसे ही अब सुबह की फ्लाइट थी, फ्लाइट शुरू हुई, तो श्रुत कीर्ति प्रभु ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद वुड यू लाइक टू हैव ब्रेकफास्ट। प्रभुपाद ने बोला यस। तो ब्रेकफास्ट प्रभुपाद का था कुरमुरा, कुरमुरा बोलते ना यहाँ पे, कुरमुरा। तो कुरमुरा उन्होंने रख दिया। अब ये एयर होस्टेस घूम रही थी, वो तो सबको जो भी प्लेन में खिला रही थी सबको, उसने देखा कि ये लोग तो कुछ और ही खा रहे हैं। और उसने, उस एयर होस्टेस ने, वो मेक्सिको की थी, उसने आज तक जिंदगी में कुरमुरा नहीं देखा था। तो वो घूमते फिरते देख रही, ये लोग क्या खा रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा था। अब ये लोग तो सर्वेंट और सेक्रेटरी, पहले प्रभुपाद को सर्व किए, ये अभी तक शुरू नहीं किए थे, क्योंकि प्रभुपाद के होने के बाद शुरू करेंगे। तो ये लोग वेट कर रहे हैं, प्रभुपाद को सर्व कर रहे हैं, प्रभुपाद धीरे धीरे खा रहे हैं। और ये एयर होस्टेस, इसे रहा नहीं गया, ये गई और ये ध्यान से देखने लगी प्रभुपाद क्या खा रहे हैं, व्हाट इज दैट। और इसने हाथ मारा प्रभुपाद की प्लेट से, ले लिया, मुट्ठी भर कर ले लिया और खा लिया। और ये लोग देख रहे हैं कि अरे, एक तो हम लोग वेट कर रहे हैं प्रभुपाद का महाप्रसंग, इसकी हिम्मत, ये तो सीधा ऐसे। और उसको इतना अच्छा लगा वो कुरमुरा, उसने कहा दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्नैक्स आई हैव एवर हैड, व्हाट इज दिस। तो इन्होंने भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, कुरमुरा पफ्ड राइस। तो पफ्ड राइस समझ में नहीं आया उसको, राइस समझ में आया, पफ्ड राइस क्या होता है। तो उसको अब उसने डायरेक्ट प्रभुपाद की प्लेट से खाया, जय श्री राधा मदन गोपाल जी की। तो सोचिए कि प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त का डायरेक्ट महाप्रसाद इसे मिला। तो तुरंत इसने फिर पूछा प्रभुपाद से, वुड यू लाइक समथिंग मोर, आई कैन सर्व समथिंग मोर। प्रभुपाद बोले, डू यू हैव हॉट मिल्क। तो उसने कहा डेफिनेटली आई कैन मेक फॉर यू। तुरंत श्रुत कीर्ति प्रभु, टू मोर। तो फिर उसने पूछा, एनीथिंग मोर आई कैन गेट फॉर यू। प्रभुपाद ने बोला, गेट सम कट फ्रूट। यस डेफिनेटली आई विल गेट सम कट फ्रूट। श्रुत कीर्ति प्रभु, टू मोर, इधर भी। तो वो दूध लेके आई, फिर फ्रूट्स लेके आई। तो प्रभुपाद कह रहे थे श्रुत कीर्ति प्रभु से, दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेकिंग महा, दैट शी इमीडिएटली हैड द सर्विस एटीट्यूड। इससे पहले उसने पूछा नहीं कि आप लोग क्या लेंगे, जैसे उसने वो खाया, तुरंत खाने के बाद उसका क्वेश्चन क्या था, मैं कुछ लाऊं आपके लिए। प्रभुपाद सेड दिस इज प्रीचिंग। वो प्रीचिंग है। और श्रुत कीर्ति प्रभु बोल रहे थे कि ये रिसेंटली, मतलब कुछ 5-6 साल पहले, श्रुत कीर्ति प्रभु मेक्सिको गए थे और मेक्सिको में वहां के पदयात्री कुछ अपने इस्कॉन के पदयात्री डिवोटीज जो कि पदयात्रा करते हुए जाते रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो पदयात्रा करते करते मेक्सिको के एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां पर उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और बहुत ठंड थी वहां पर। तो उन्होंने देखा कि एक घर के सामने तुलसी है। उन्होंने कहा अरे तुलसी एक घर के सामने, तो उन्होंने वो कि हो सकता डेफिनेटली इस्कॉन का ही कोई होगा, तुलसी कौन रखेगा मेक्सिको में घर के सामने। तो उन्होंने घर के खटखटाया तो एक वृद्ध महिला खोली दरवाजा और ये वही थी एयर होस्टेस जिसने प्रभुपाद के प्लेट से कुरमुरा खाया था। उसके घर में ऑल्टर वो चैंटिंग कर रही थी और पूरा तिलक वगैरह लगाकर, और उसने इन भक्तों को वहां पर रहने के लिए आश्रय दिया, उस रात को प्रसाद बनाकर उनको खिलाया और उसने पूरी स्टोरी सुनाई। इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम दैट वन हैंडफुल ऑफ कुरमुरा और पफ राइस विच आई हैड ऑफ योर स्वामी जी। तो पॉइंट क्या है, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कुरमुरा। When it is offered to Krishna, Mahaprasad. तो अब देखिए कि उस समय श्रुत कीर्ति प्रभु बोल रहे थे कि उनको बहुत ऑफेंसिव लगा कि ये क्या है, एक सन्यासी के प्लेट से ये एयर होस्टेस छीन के खा रही है, मतलब किसी दूसरे कस्टमर दूसरा जो पैसेंजर है उसके प्लेट से भी लेना एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। एयर होस्टेस ऐसे कर नहीं सकते, उनको तो सर्व करना है भाई, लेना नहीं उनके प्लेट से। बट दैट एपरेंट ऑफेंस टर्न्ड आउट टू बी अ बून, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसलिए प्रीचिंग ये नहीं समझना चाहिए जैसे हमने सेंट फ्रांसिस को कोट किया, वन शुड प्रीच ऑल डे लॉन्ग एंड इफ वन गेट्स चांस टू स्पीक देन वन कैन स्पीक ऑल्सो। So preaching should be with one's example. तो अब यहां पर important point ये है कि जब हम प्रचार कार्य में लगते हैं या जब हमारे authorities हमको प्रचार में लगाते हैं तो दो प्रकार के प्रचार होते हैं। एक है that a preacher tries to convert the other person, उसको कन्वर्जन बोलते हैं। बहुत वेस्ट में ये कन्वर्जन वर्ड बहुत ऑफेंसिव वर्ड है, इसलिए प्रीचिंग वर्ड भी बहुत ऑफेंसिव लगता है उनको। वेस्ट में वो लोग बोलते नहीं कि आई एम गोइंग फॉर प्रीचिंग, वो लोग ऐसा बिल्कुल नहीं बोलते, टीचिंग बोलते हैं, टीचिंग। क्योंकि प्रीचिंग वहां पर वो जो क्रिश्चियन मिशनरीज प्रीचिंग करते हैं तो वो लोग कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। इंडिया में भी कितना हो रहा है। तो एक है कन्वर्जन और एक है इंस्पिरेशन। तो प्रीचिंग में हमको क्या करना है, दिस क्वेश्चन इफ वी आस्क, आर वी प्रीचर्स मेंट फॉर कन्वर्जन और आर वी प्रीचर्स मेंट फॉर इंस्पिरेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जन एंड इंस्पिरेशन। कन्वर्जन मीन्स You become like me. That is conversion. कि मैं जो कर रहा हूं वो करो, वैसा बनो, वैसी वेशभूषा पहनो, सब कुछ वैसा करो जैसा मैं कर रहा हूं। That is called conversion. And that is fanatic. कट्टरवादी जिसको बोलते हैं। Inspiration means wherever you are, you try to become Krishna conscious. That is inspiration. जैसे कि चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के साथ वार्तालाप उन्होंने किया श्रीरंगम में, तो चैतन्य महाप्रभु को पता लगा कि वेंकट भट्ट ये लक्ष्मी संप्रदाय में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के उपासक हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको कन्वर्ट नहीं किया, चैतन्य महाप्रभु ने उनको लक्ष्मी नारायण की उपासना करने के लिए प्रेरित किया। ये है एक प्रचारक का वास्तविक रोल, दैट ही डजंट ट्राई टू कन्वर्ट द अदर पर्सन टू बिकम लाइक हिम, बट ही इंस्पायर्स दैट वॉट एवर वे यू कैन बी कृष्ण कॉन्शियस फ्रॉम योर लेवल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. मुरारी गुप्ता, चैतन्य महाप्रभु की ये सब पार्षद हुए, मुरारी गुप्ता ये रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे. कई बार हमको इस्कॉन में लगता है अरे तो राम के भक्त है ये, कृष्ण के होने चाहिए. हमको कई बार हम लोग ये सोचते कि कृष्ण का भक्त नहीं है तो क्या. अब मुरारी गुप्त वो प्रभु श्री राम के भक्त थे, और जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि इनकी जो भक्ति प्रभु श्री राम में इतनी गहरी है, तो उन्होंने कह दिया कि धन्य है वो स्वामी जिनको आप जैसा सेवक मिला, और धन्य है आप जिनको रामचंद्र जी जैसे स्वामी मिले. दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन. प्रभुपाद जब हिप्पियों को कृष्ण भावनामृत क्या कर रहे थे, प्रभुपाद ही वॉज नॉट कन्वर्टिंग देम, ही वॉज शेयरिंग वॉट ही हैज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्पिरिचुअल मास्टर. दैट्स व्हाट प्रभुपाद ऑलवेज सेड, आई शेयर्ड व्हाट आई हैव रिसीव्ड. तो प्रभुपाद क्या कहते थे, आई हैव कम टू मेक यू अ बेटर क्रिश्चियन. यहां तक प्रभुपाद कहते थे, आई हैव नॉट कम हियर टू मेक यू इनटू हरे कृष्णा, I have come here to teach you what you have forgotten. If you have forgotten your Christianity, I have come to teach you what is proper Christianity. If you have forgotten your religion, whatever it is, Judaism, Islam, Christianity, I have come to teach you to do that properly. तो आप लोग ये प्रश्न पूछेंगे, तो फिर हम लोग ये कृष्ण के बारे में क्यों बोलते हैं? तो हम क्यों बोल रहे हैं, हम शेयर कर रहे हैं कि भाई मेरे जीवन में भगवान श्री कृष्ण ने मुझे, मेरे जीवन को इतना सुंदर बनाया है. सो वी आर जस्ट शेयरिंग द ब्यूटी विच वी हैव रिसीव्ड इन अवर लाइफ, द ग्रेस विच वी हैव रिसीव्ड बाय कृष्ण, वी आर शेयरिंग दैट. जैसे मैं हाल ही में जब आया अपने दिल्ली के एयरपोर्ट में, मैंने देखा बड़े टेलीविजन स्क्रीन पर ये पता नहीं कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट चल रहा था, संधि सुधार, और वो चल रहा है 15 मिनट तक, संधि सुधार लगाइए, कोई मलम है पता नहीं, हाँ तेल तेल, हाँ तो संधि सुधार लगाइए. और एक एक को कई कहां कहां से लोगों को पकड़ पकड़ कर ला रहे हैं, इन्होंने संधि सुधार लगाया, बताइए क्या हुआ आपके साथ. तो वो लोग बोलते हैं मैंने संधि सुधार लगाया, सब सुधर गया. वही नाम भी उसका वही, और वो 10 मिनट तक बोले जा रहा है कि मेरी ये प्रॉब्लम थी, संधि सुधार लगाने से अब ये हो गया है मेरे जीवन में. फिर दूसरे को लेके आता, आप बताइए आपके साथ क्या हो, फिर वो बताते. तो मेरे को लगा कि ये प्रचार ही कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं लोग. लेकिन प्रचार में कर क्या रहे हैं कि मेरे जीवन में क्या हुआ संधि सुधार जो भी है लगाने से. तो हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से वही कर रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से मुझे क्या मिला, मेरे क्या सुधार हुआ, ये हम लोग शेयर कर रहे हैं. जैसे प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आया और वो बोले जा रहा था कि प्रभुपाद स्वामी जी इसके बारे में क्या कहना है आपको, इस बाबा के बारे में क्या कहना, उस बाबा के बारे में क्या कहना है, उस स्वामी जी के बारे में क्या कहना है. प्रभुपाद ने कहा हुम डू यू फॉलो, उसने कहा आई डोंट फॉलो एनीवन. प्रभुपाद कहे जस्ट फॉलो समवन. फिर उसने कहा कि बट स्वामी जी यू आर सेइंग दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, सो आर यू नॉट ऑल्सो ट्राइंग टू प्रोपगेट वट यू आर फॉलोइंग. प्रभुपाद ने बहुत सुंदर आंसर दिया. प्रभुपाद ने कहा सी इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस वॉट आई हैव फाउंड इन माई 70 years ऑफ लिविंग इन दिस वर्ल्ड and my personal experience of reading scriptures, I have found Krishna as the supreme personality of Godhead. If you find anyone more attractive than Krishna, do let me know. I'll follow him. Until then, you also follow. तो यहां प्रभुपाद ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और प्रभुपाद एक फैनेटिक प्रीचर भी नहीं बने कि जस्ट फॉलो व्हाट आई एम फॉलोइंग. प्रभुपाद ने क्या कहा, इन माय 70 इयर्स ऑफ लाइफ दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड. हां अगर तुमको कोई भगवान कृष्ण से भी ज्यादा अट्रैक्टिव कोई दिखता है या समझ में आता है ऑथोराइज कोई तो मुझे बताना, डेफिनेटली I'll surrender unto that person. और अगर कोई नहीं मिलता है तो मैं जो प्रस्तुत करता हूं, why don't you try this? Rather than not trying anyone. क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि लिस्ट सबके सबकी लिस्ट उनके पास रहती है लेकिन फॉलो किसको नहीं करते हो. So, in our Krishna consciousness movement, our preaching should not be in the fanatic mood of trying to convert people to make them into what we are, but trying to inspire them. If by that inspiration they automatically on their own take up to this Krishna consciousness lifestyle, well and good. If not, we should not become fanatic preachers, then you are doomed. That was not what Prabhupada desired. Prabhupada desired that whoever a person is in whatever level, however he can be inspired to get attracted. Because Krishna is unlimited. Don't think that Krishna is only the property of ISKCON. Don't be in this illusion that Krishna is only the property of ISKCON. ISKCON is the property of Krishna. And ISKCON is one organization amongst so many other bona fide organizations who are also propagating the pure process of Krishna consciousness. इसलिए एक प्रचारक की भूमिका बहुत ही मैच्योर्ड भूमिका होती है. क्यों? क्योंकि वो पूरे गुरु परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रहा है. He is representing the entire Guru Parampara until Krishna. तो उसके ऊपर कितना serious responsibility है. इसलिए हम जब यहां पर आकर साधना कर रहे हैं तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि केवल जो व्यासासन के ऊपर बैठकर लेक्चर दे रहा है उसकी जिम्मेदारी है. नहीं, यदि हम अपने आप को एक ISKCON का साधक मान रहे हैं और अपने आप को हम बता रहे हैं कि मैं एक ISKCON का साधक हूं, तो हम सब का उत्तरदायित्व है कि हम ठीक तरीके से मैच्योरली श्रील प्रभुपाद को रिप्रेजेंट करें. और यदि हम नहीं कर पा रहे, सो प्लीज डोंट टेक द पोजिशन ऑफ बिकमिंग अ प्रीचर ऑन योर ओन हैंड्स without being appointed. अगर हमारे पास वो maturity नहीं है, so don't become self-appointed preachers in this temple. Prabhupada ने बोला clearly, if you have the maturity to present Krishna consciousness the way the Guru Shishya Parampara has given, then only you open your mouth or you try to inspire someone. Otherwise, keep your mouth shut. It is better to remain silent than to create more damage by misrepresenting the Guru Parampara. ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ये पॉइंट क्योंकि बहुत से ISKCON के मंदिरों में होता है. Because it's a voluntary organization, द्वार सबके लिए खुले हैं. आते हैं यहां पर वो लोग lifestyle follow करना शुरू करते हैं और फिर कई बार अधकुचड़ा ज्ञान जो होता है, मतलब जिसको बोलते हैं हाफ हैंड फिलॉसफी, तो वो ज्ञान थोड़ा सा लेकर फिर वो खुद को प्रचारक बनकर दूसरों को बताना शुरू करते हैं लेकिन गलत तरीके से. और जो नए आते हैं उनको क्या लगता है कि इनको इस्कॉन के अथॉरिटीज ने अपॉइंट किया है। और फाइनली इस्कॉन है कौन? श्रील प्रभुपाद। तो जो भी बैड प्रेस जिसको बोलते हैं वो किसके पास जाता है? फाइनली प्रभुपाद के पास। वेट वेट, विल टेक क्वेश्चंस लेटर। सो द पॉइंट इज वेरी सीरियस ओवर हियर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल द रोल ऑफ अ प्रीचर इज वेरी सीरियस, इट्स नो जोक, बिकॉज वी आर डायरेक्टली रिप्रेजेंटिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिफाइंड लीनिएज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। और यदि हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं है, हमारे अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है, सो आई रिक्वेस्ट प्लीज डोंट टेक द लॉज ऑफ प्रीचिंग इन योर ओन हैंड्स विदाउट बीइंग ऑथोराइज्ड एंड ट्राई टू इंस्ट्रक्ट न्यू पीपल इन योर इमेच्योर वे, बिकॉज देर इज अ होल टीम, दे आर शेलिंग आउट दैट स्वेट एंड ब्लड to somehow or the other inspire people to come to Krishna consciousness. At least we should not become instruments to make people go away from our temple forever. Aisa hua hai. Kai bar hum self-appointed preachers ban jate hain aur hum is prakar se prachar kar dete hain fanatic tarike se ki idhar nahi khada hona, idhar nahi ye karna, udhar ye nahi karna, jabki humko kisi ne appoint nahi kiya kuch karne ke liye. और वो नया व्यक्ति, उसको क्या लगता है कि यही इस्कॉन है। और फिर होता क्या है कि जिस व्यक्ति ने जिसको बहुत फैनेटिक तरीके से कुछ बोला है, वो व्यक्ति उस तथाकथित प्रचारक को वही गलती करते हुए देखता है। ये मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि वही जिसने किसी को कह दिया कि तुम यहां पर खड़े नहीं रह सकते, तुम यहां पर प्लेट नहीं धो सकते, तुम यहां पर ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये इस्कॉन का मंदिर है, और वही जब वापस आते हैं तो जिसने उनको बोला था वो देखते हैं कि वो साफ साफ वही गलती वो खुद कर रहा है। सो अनदर थिंग इज व्हेन यू आर प्रीचिंग नो दैट देयर इज वन पर्सन हु इज टेकिंग डाउन नोट्स ऑफ योर प्रीचिंग एंड दैट इज कृष्णा। वो नोट्स निकाल रहे हैं आप जो बोल रहे हैं किसी को, एंड ही इज गोइंग टू पुट यू टू टेस्ट फर्स्ट, और उनके नोट्स बहुत पक्के हैं। वो लेक्चर में सोते नहीं। सो मेनी टेम्पल्स इन इस्कॉन हैव फेस्ड दीज प्रॉब्लम्स wherein what Prabhupada has presented is something so matured, something so refined, something so cultured and civilized. But when it is presented in a very, very fanatic manner, we are actually, you know, creating a stigma on the face of Srila Prabhupada. Isko bolte hai na? To, agar hum kam se kam जो कुछ चल रहा है उसको डैमेज तो ना करें, उतना तो हम कर सकते हैं कि जब तक हमारे अंदर वो मैच्योरिटी न आए तब तक हम इस कार्य को अपने हाथों में और अपने कंधों पे जबरदस्ती न लें। बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस टू बी स्प्रेड, चैतन्य महाप्रभु सेड जन्म सार्थक कर पहले फिर परोपकार। उस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, पहले हमें अपना स्वयं का जन्म सार्थक करना है और फिर परोपकार उन्होंने कहा है। तो हमें प्रचार करने से पहले यह सोच लेना है कि क्या मैंने अपने आप को पक्का किया है कि नहीं, और यदि मैंने अपने आप को पक्का किया है, जैसे बोलते हैं कि मैं अपने गिरेबान में झांक कर देखूं, यदि मैं पक्का हूं इस मामले में, तो मैं उसको उस हिसाब से प्रेजेंट करूं, यदि नहीं तो फिर चैतन्य महाप्रभु इसके द्वारा ये कह रहे हैं कि पहले अच्छे साधक बनो और फिर आगे चलकर प्रचारक। सो फर्स्ट वी हैव टू बिकम अ वेरी वेरी सिंसियर साधक एंड देन वी हैव टू एंगेज इन प्रचार। तो ये है ये थर्ड लेसन इस प्रसंग से, दैट प्रीचिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज by which we can help directly Sri Chaitanya Mahaprabhu in his mission. And if not done properly, we can directly offend him, because he is the one who is trying to get all the conditioned souls at the feet of Krishna. So let us help Sri Chaitanya Mahaprabhu in a way by which he'll be pleased by our personality, by our example, and yes, of course, our preaching also. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Any questions?
Hare Krishna Prabhuji. अभी आपने कहा कि द प्रीचर शुड नॉट प्रीच बाय बैड स्टाइल, मीन्स कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट, मीन्स इमैच्योरिटी। आई अंडरस्टूड दैट साधक, फर्स्ट वी हैव टू बी साधक, सो प्लीज कैन यू एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम। बैड स्टाइल मीन्स व्हाट वे?
सी आई वाज मेकिंग द पॉइंट दैट preaching has to be done in a very matured manner. What Prabhupada taught us was that we have to inspire everyone and not make them fearful of Krishna or fearful of our movement. That if you don't follow this, if you don't follow this, if you don't follow this, then you are going to hell. Because we were also at some point of time in that situation wherein we were totally unqualified to follow any rules and regulations. So fanatic preaching is when we try to impose the rules on a newcomer in a very immature manner without understanding the capacity of that person. And what was Prabhupada's style? That even if a person is a hippie, total drug addict, Prabhupada would inspire whatever spark he would see. If he's attracted, say, to the deity, he would inspire him to get attracted to deity, rather than making him afraid of what he's not following. Yes, eventually he should be made aware of what he's not following, but it has to be done in a very matured manner. So if someone who doesn't know how to present this philosophy to individual in that matured manner, one should not do that. One should just chant his 16 rounds, associate with devotees, and with that example, you are automatically preaching. So if anyone wants to open the mouth to chant Hare Krishna. And if you have the maturity and the adhikar, then open the mouth to give the philosophy. Okay?
But what I have particularly found after reading Srila Prabhupada's books, that it has some magic, that as soon as you start reading it, you cannot keep it to yourself. You always like to share. So in that circumstances, like if you are not a complete, you don't have all the attributes of being a bhakt, still you feel like telling it or giving that message. So in that circumstances, how one should manage?
See, the point is that We are not saying that you should not share what you have got from Prabhupada's book. Definitely you should share. But again, if you share things from Prabhupada's book, give to that person. Just like, you know, if I give the example of, say, medicine or a medical textbook. Now, the medical textbook has medicines of, you know, high levels and low levels, moderate levels. But the doctor, it's not that he has read, 5 years he has read all the medical textbooks. But he will administer the medicine according to the patient. If somebody has come with just common cold, now he might be a cancer specialist. He might have read about chemotherapy. Now this person has come with a common cold. Chemotherapy, chemotherapy bahut powerful hota hai. To bichara khali sardi khansi ka aaya, usko chemotherapy kar diya. That is called immature. So Prabhupada books are like, you know, everything from basic philosophy to the highest philosophy, everything is there in Prabhupada's book. And you might have read everything also. And you might know everything also. But the person who has come to you, with whom you are sharing, that person might be not on that level to right now get everything what you know. The example of the patient and the doctor. The doctor sab kuch pehle check karta hai, लास्ट में मेडिसिन लिखता है वो, है ना. पल्स चेक करेगा वो, बाद में हार्ट बीट चेक करेगा, ब्लड प्रेशर चेक करेगा, सब सिम्टम्स चेक करके कि ये पेशेंट के लिए कौन सी दवाई उपयुक्त है. वो ड्रग स्टोर में तो बहुत सारी दवाई है, लेकिन इसके लिए कौन सी दवाई उपयुक्त है वही प्रिस्क्राइब करेगा वो. सो वी हैव टू बी लाइक दैट.
एंड अनदर क्वेश्चन इज दैट बाबूजी,
नाउ दिस एग्जांपल ऑफ डॉक्टर, इमेजिन doctor doesn't have that maturity and he has opened a clinic, so he is doing great damage to the society. Uske andar maturity nahi hai, usko authority bhi nahi mila hai, kya bolte, quack. And he has opened a clinic, zor shor se advertise kar raha hai ki aapki sari samasyaon ka samadhan main karunga. Hote na kahi baba raza murad bengali tent vent laga ke. खतरनाक होते हैं बहुत. तो वैसे ही कई बार होता क्या है कि इस्कॉन के मंदिरों में हमको न तो सर्टिफिकेट मिला है MBBS का, न हमको सारी दवाइयां पता है, कुछ एक आध दवाइयां यहां वहां से सुन लिया और हम आके इस्कॉन के मंदिर में अपना क्लिनिक खोल देते हैं. इधर आओ, मेरे पास आओ. और फिर हम लोग शुरू कर देते बताना कि मैं बताता हूं तुमको, ये वो क्या बताएगा ऊपर बैठा है, मैं बताता हूं इधर. एंड देन समवन सम अपस्टार्ट यू नो स्टार्ट्स प्रीचिंग व्हाटएवर ही फील्स. सो दैट इज वेरी वेरी डेंजरस. एंड व्हाई? बिकॉज ओवर द इयर्स इस्कॉन हैज बीन बर्नट लाइक एनीथिंग बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ पीपल हु दे डू नॉट हैव द मैच्योरिटी, दे डू नॉट हैव द अथॉरिटी, बोथ नो अथॉरिटी नो मैच्योरिटी. And just self-appointed preachers.
And one more question is that, Babuji, like while preaching, you might have also experienced this, that you have been mocked or ridiculed. Particularly up to that point, it is okay. But when the blasphemy is of Krishna, one particularly gets angry. So why that anger? Is it because of our ego that I'm worshipping Krishna? Or is it that I have some attachment towards Krishna? How will I distinguish this point when the blasphemy is done on Krishna? Sometimes,
see, pure devotees, when they become angry when Krishna is blasphemed, their anger is also a kind of compassion. Just like how parents become angry on children. If a child is using abusive language, is, you know, speaking in an abusive way to even the elder brother, the younger brother is speaking abusively to the elder brother, the mother slaps. Ye tarika baat karna. So why the mother is slapping, why the mother is becoming angry? Because the mother wants that the child should rectify. So the anger also, which sometimes preachers, they express when Krishna is being blasphemed, is not because, you know, I am worshipping Krishna, how can you say something about Krishna because I am worshipping Krishna? No, to rectify that person, because if he keeps on blaspheming, he's going to go to hell. So if becoming angry can stop, you know, he's going to hell, that is what a preacher will do. Preacher will do anything to rectify the person. Same example of Hiranyakashipu and Prahlad. Prahlad tried softly preaching. Nahi hui, baat nahi bani. And then finally, Lord Narasimhadev had to come, and Lord Narasimhadev had to, finally he was delivered. But in a very gruesome manner. Hiranyakashipu was delivered in a very gruesome manner. So, when we see that picture of Lord Narasimhadev, all over blood, intestines coming out, it's a preaching program going on. Antadiyan bahar hai, khun sab jagah par. Kya ho raha hai? Prachar chal raha hai, preaching program chal raha hai. Kyun? Kyunki usko wohi bhasha samajh mein aa rahi. So that is not killing of Hiranyakashipu, it is deliverance of Hiranyakashipu. Hiranyakashipu ka dhar ho raha hai. वो हमको अभी ऐसे समझ में नहीं आता, लेकिन उसको समझ में आ रहा है हिरण्यकश्यप. ठीक ठीक उसको समझ में आ रहा है.
बट
फलेन परिचयत, वी सी विद द एंड रिजल्ट.
बट प्रभु जी, लाइक व्हेन वी आर एंग्री, we normally tend to delude and lose the topic. So in like, while when we are injecting that Krishna consciousness, we divert to that. Divert
so from that's what, if we do not have the maturity to use anger in a proper way, leave that place.
Yeah.
Don't get into that trouble.
That is what my...
Yeah, leave that. Hmm. Like how Prabhupada would become angry, many times he would become angry. But Prabhupada's anger was filled with so much compassion that other person, he would never feel offended. Like Mr. P.L. Sethi, you know, he became a life member. Prabhupada asked him, so what's your daily schedule? He said, I get up, I take my breakfast, I read newspaper, go to office. Prabhupada said, so what's the big deal? Pig also does the same thing. So because Prabhupada had that purity, even speaking such thing, that Mr. Sethi, he got, you know, transformed. We cannot imitate this now. Abhi hum log kal soche, chalo main bhi dhoondta hu kisi ko, usko poochta hu, batao bhai subah kya karte ho? Aur wo bole, ye to suar ka jeevan hai, suar mein aur tum mein antar kya hai? And then we'll find tight slap on our face. And then we'll realize, are ye kya hua? Because we do not have the adhikar and maturity of Prabhupada. So if, now there are options given. If somebody is outrightly blaspheming Krishna and you are not able to handle that person, either philosophically or emotionally, however, then you better save yourself and leave that place. Don't listen to the blasphemy.
Thank you, Prabhuji. Hare Krishna.
Hare Krishna.
एक प्रश्न. हम बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे साथ, हम जिन साधकों के साथ रहते हैं, तो साधकों के साथ रहते हुए हम बाकी बाहर के लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बातें प्रचार में बताते हैं, लेकिन वही चीजें जब हम हमारे साथ के जो भक्त हैं उनके साथ जब हम रहते हैं तो वो पालन नहीं करते, तो उसका जो प्रभाव है वो बाहर के लोगों के ऊपर पड़ता है. लेकिन फिर भी हमें समझ में आता है कि बाहर मैं जो प्रचार कर रहा हूँ उसका असर नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि
मैं मेरे जीवन में वो प्रैक्टिकली पालन नहीं कर रहा हूं, ऐसा समझ में आता है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि अगर हमें दिखाई दे रहा है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में पालन नहीं कर रहा है लेकिन बाहर जाके बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, तो उस व्यक्ति को चेंज करने के लिए हमारा उसमें क्या सहयोग होना चाहिए?
सबसे पहले तो जो हमारा सिद्धांत है कि जैसे हमने आज प्रचार के ऊपर लेक्चर दिया, तो सबसे पहला पॉइंट हमने यही कहा कि अपने उदाहरण से प्रचार करना, न केवल भाषणबाजी से, हमारे उदाहरण से प्रचार करना है। और उदाहरण से प्रचार करने का अर्थ ये है कि जो हम बोल रहे हैं, दो चीजें हैं इसमें, जो हम बोल रहे हैं वो हम अपने जीवन में उसका पालन करें, और यदि हम उसका पालन नहीं कर रहे तो जो हम पालन कर रहे हैं केवल उतना ही बोले। ये दोनों चीजें हैं। तो उस व्यक्ति को हम यही समझा सकते हैं, ये सिंपल फॉर्मूला है कि यदि मैं कुछ बोल रहा हूं तो मैं उसका पालन करूं, और यदि मैं जो बोल रहा हूं उसका पालन नहीं कर रहा तो मैं बोलूं नहीं, और मैं वही चीज बोलूं जिसका मैं पालन कर रहा हूं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं, अब कई बार लोग इसके अंदर भी कुछ फॉर्मूला निकाल लेते, कलयुगी बुद्धि ऐसी है, तो कई लोग ये मानते हैं कि भाई ठीक है मैं फिर प्रचार नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पे बताया गया है कि आप प्रचार वही करो जो आप पालन कर रहे हो, तो फिर मैं प्रचार नहीं करूंगा, तो अगर मैं प्रचार नहीं करूंगा तो मुझे पालन करने की जरूरत नहीं। दिस इज अ टिपिकल हिपोक्रेट। जैसे कई लोग हैं ना, वो लोग, एक मेरे रिश्तेदार, मेरे बहुत क्लोज रिश्तेदार, वो, उनको मैंने राधानाथ महाराज की सीडी दी थी सुनने के लिए, उन्होंने केवल आधा लेक्चर सुना और सीडी में कुछ 20-25 लेक्चर थे, वापस लाके मुझे दे दिया। मुझे फिर से कभी मत देना ही। मैंने क्यों, समझ में नहीं आया। बोला नहीं, ये आदमी बहुत पावरफुल बोलता है। और मैंने जो आधा घंटा सुना, वो आधे घंटे में ही मेरा जो कार्यक्रम चल रहा है जीवन का, वो सब विध्वंस करने की बातें बोल रहे थे। तो मैं ज्यादा सुनूंगा तो मुझे गिल्टी महसूस होगा, गिल्टी महसूस होगा तो जो मैं कर रहा हूं मैं कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं सुनूंगा ही नहीं। दिस कॉल्ड अ हिपोक्रेट। तो इसलिए मैं प्रचार ही नहीं करूंगा, क्योंकि फिर गिल्टी महसूस करूंगा कि अरे मैं इसका पालन नहीं कर रहा हूं। नहीं, इसलिए होता है ना कि कई बार किसी की शादी कराई जाती है दो कारणों की वजह से, एक तो उसको नौकरी मिल गई तो चलो शादी करो, एक तो नौकरी नहीं मिल रही तो शादी कर लो, अपने आप ढूंढ लेगा नौकरी। घर चलाना है तो कर, हाथ पैर मारेगा ही वो। तो हम क्या पालन कर, क्या फॉलो करते हैं फॉर्मूला कि यस आई विल ट्राई टू प्रीच द मोस्ट एलिवेटेड एंड डिटरमाइंड फिलोसफी सो दैट ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ दैट प्रीचिंग आई विल फॉलो। तो ये सबसे हेल्दी कॉन्शियसनेस है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, समझ गए आप? कि दैट प्रीचिंग विल कीप मी प्रोटेक्टेड इन माय पर्सनल एग्जाम्पल एज अ साधका। दैट शुड बी द कॉन्शियसनेस ऑफ अ प्रीचर।
हरे कृष्ण प्रभु जी, एक लेक्चर में प्रभु जी आपने बताया कि प्रचार कार्य जो है वो आंतरिक रूप से चलता है, बाहरी रूप से नहीं चलता, इट इज नॉट ऑन द एक्सटर्नल लेवल, इट इज ऑन इन द इंटरनल लेवल.
द रिजल्ट, रिजल्ट, रिजल्ट के बारे में मैं बोल रहा था कि हमको खाली बाहरी रिजल्ट से प्रभावित नहीं हो जाना चाहिए. कई बार बाहरी रिजल्ट आपको बहुत अच्छा दिख रहा होगा. कितनी बार मैं अपने पिछले 15 साल के प्रचार के एक्सपीरियंस से बताता हूं कि कितनी बार ऐसे ऐसे आपके प्रचार के बाद लोग आएंगे कि तुरंत वो कि अभी बस बताइए सरेंडर करने के लिए क्या करना है मुझे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, इतने इंटेंस क्वेश्चंस रहेंगे, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और आपको लग रहा है कितना इंटरेस्टेड है ये क्वेश्चन पूछना, मतलब इंटरेस्टेड ही है ना. और फिर एक हफ्ते बाद आप वो दिखता ही नहीं किधर है. तो कई बार हम प्रभावित हो जाते हैं कि कितना वो क्यूरियस और इंटरेस्टेड लग रहा है. और कई बार कोई प्रश्न ज्यादा पूछेगा नहीं, बट वो अपने जीवन में बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है सब कुछ. तो इसलिए जो सक्सेस और फेलियर है ना प्रीचिंग का, वो मैं बोल रहा था कि उसका एक एक्सटर्नल लेयर होता है और एक उसका इंटरनल सब्सटेंस होता है. तो कई बार जो एक्सटर्नली आपको लग रहा है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो सकता है इंटरनली कोई सब्सटेंस नहीं उसके अंदर. और कई बार एक्सटर्नली ये दिख रहा है कि आप फेलियर हो रहे हो, लेकिन इंटरनली उसके अंदर सब्सटेंस है.
ये जो रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप किस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि वो भी एक प्रकार से प्रचार कर सकती है, भक्तों के बीच में जो रिलेशनशिप है उससे भी प्रचार होता है. तो अच्छा रिलेशनशिप या बुरा रिलेशनशिप से हम किस प्रकार समझे कि प्रचार अच्छा हो सकता है?
मैक्सिमम आप देखो, मैक्सिमम परसेंटेज लोग जब इस्कॉन के मंदिर में आते हैं तो जो बुद्धिमान हैं वो लोग खाली लेक्चर सुन के चुप नहीं रहेंगे. जो बुद्धिमान हैं, जिनको शास्त्र में सुमेधसा कहा है, तो वो लोग लेक्चर सुनने के बाद देखेंगे कि हाँ भाई ये लोग जो बोलते हैं ये लोग अपने आप में फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं? वो लोग देखते हैं. यही तो मैं बता रहा था कि बोलने के लिए फिलॉसफी हमारी बहुत लॉफ्टी और बहुत एसोटेरिक है, लेकिन जब व्यक्ति देखता है कि ये लोग बोल रहे हैं लेकिन फॉलो नहीं कर रहे, बोल तो रहे हैं कि एक वैष्णव को दास दास अनुदास होना चाहिए, तो व्यासासन पे तो बोल दिया, लेकिन जैसे व्यासासन से उतरे उसके बाद में व्यवहार में तो बासोनुबास लग रहा है. तो यही है कि हर एक चीज, चाहे हमारा वैष्णव रिलेशनशिप हो, चाहे पर्सनल साधना हो, हमें यह समझना है कि ये नहीं कि हम केवल उस कॉन्शियसनेस में रहें कि दूसरा मुझे देख रहा होगा तो कितना इंस्पायर हो रहा होगा. ये भी गलत है कि उसको दिखाने के लिए मैं फॉलो करूं, नहीं, वो भी हिपोक्रेसी है. हमें जो कुछ करना है स्वयं के लिए करना है. मेरे उद्धार के लिए मैं करूंगा फॉलो उसको, मेरे उद्धार के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए. और हम अगर केवल इस दो चीज पे फोकस करें, वी सिंसियरली ट्राई टू बिकम अवर ओन डिलीवरर्स एंड टू प्लीज कृष्णा, वी कैन बिकम द ग्रेटेस्ट प्रीचर विदाउट स्पीकिंग अ सिंगल वर्ड, without giving hours and hours of lectures, we can become the greatest preacher just by following these two things, to become our own deliverers sincerely and to please Krishna. Bas ye sab in substance hai aaj ke lecture ka. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. To सभी भक्तों के लिए खुश खबर कि हमारे आने वाले साल का कैलेंडर ये रिलीज आज हम कर रहे हैं. जो कि हमारे स्टॉल पर अवेलेबल है, तो इसमें हमारे राधा मदन गोपाल जी के जो सबसे हाई क्वालिटी उत्कृष्ट जो फोटोज हैं फेस्टिवल्स के वगैरह, और उसके साथ साथ जो भी वैष्णव कैलेंडर, तो ये हमारा अगले साल का रिलीज हो चुका है, तो भक्त जो चाहते हैं कैलेंडर्स वो ले सकते हैं। और एक और भजन की सीडी आज हम हमारे स्टॉल से रिलीज कर रहे हैं, ये हमारे प्रिय वृंदावन प्रसाद प्रभु द्वारा गाए गए। इस सीडी का नाम है निवेदन, और इसके अंदर वृंदावन प्रसाद प्रभु ने कुछ 6 भजन गाए हैं अपने वैष्णव सॉन्ग बुक के, और भजन जो हैं काफ़ी अनकॉमन भजन्स हैं और उनके ट्यून्स भी अनकॉमन हैं। तो ये सीडी भी आज हम रिलीज कर रहे हैं, तो ये भी स्टॉल पे अवेलेबल है, तो ये कैलेंडर और सीडी जो भी भक्त चाहते हैं वो लोग ले सकते हैं। जय श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, ताई गौर प्रेमानंदी,
श्रीमान शिक्षाष्टकम प्रभु की जय,
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।